ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਨ ਨੇ ਔਰ ਹੂ ਬਹੁ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਠੇ ਭੀਤਰ ਕੋਠੜੀ ਪਰਮ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਤਾਂ ਮਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਦੇਨ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਗਰਸ ਕੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਤੀਸਰਾ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਵਈਏ ਨੇ, ਚੌਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਲੰਘ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਹਰ ਕੋਸ਼ ਦੀ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੀਰ ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੀਰ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੀਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੁਲ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣਾ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਹੁਰ, ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ। ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਹੁਰ ਮਜ਼ਨ ਔਰਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਅਸਤਿਫਲ ਏ ਜ਼ਦ ਕਲ ਕੁਨਦ ਪਸਤਾਨ ਏ ਮਾਦਰ ਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜਨਮ ਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਕਰ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਣ ਪਾਛੇ ਦੂਧ ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ ਸਾਬਨ ਸੂਦ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੌਜੂਦ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਨਿੰਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਣੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਹ ਪਾਲਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੋਹ ਕਿਸਨੇ ਪਾਇਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ, ਰੱਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ? ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਣਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਗਾ? ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਮੋਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ ਘਟਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੋਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੇ ਪਿਆਰੋ ਸੁਤ ਗੋਦ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੁਨੇਹ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੱਭ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ। ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਮੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮਹੁਰ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ। चिंता भविष्य की आँदी है, यादा माजी दी आउंदियां ने। बगौर कदी मुताला करके वेखना, जो यादा विच डुबिया होवेगा वह गुजरे हुए कल नाल, जो चिंता विच डुबिया होवेगा वह आन वाले कल नाल जुड़िया होया। बगौर तुसी देखना, कोई यादा विच बैठा है तो यादा ते गुजरे हुए कल दी आउणगियां और किस दियां। कोई चिंता च बैठा है तो चिंता ते आन वाले कल दी होवेगी और किस दी होवेगी, आन वाले कल दी। भविष्य की बंदे नूं बड़ी चिंता है, अज मिलिया है पता नहीं कल मिलना है कि नहीं, अज मैं जीवियां पता नहीं मैं कल जी सकांगा कि नहीं, अज मैं प्रसन्न हां पता नहीं कल ये खुशी रहनी है कि नहीं, अज इज्जत है पता नहीं कल मेरे को इज्जत होनी है कि नहीं। तो चिंता कल दी है बंदे को, ते कल विच जीण वाला बंदा लाजमी चिंता तुर होवेगा, चिंता दी पंड उसके सिर के उत्ते होवेगी, हर हालत च होवेगी। और जो यादां विच डुबिया है, याद वो माजी नाल जुड़े होवेगा, गुजरे हुए कल नाल। धार्मिक ऋषियों ने जिस ढंग नाल मनुख दे मन दी अंदर झात मार के वेख्या है, जवान दस जिथे बैठे होवन या कल्ला बैठा होवे, चिंता भविष्य की आने वाले कल की चिंता, बुढ़ा जिथे बैठा होवे यादा माजी दिया गुजरे हुए कल दिया यादा। दस बुढ़िया की गल्ला कदी सुन लेना, गुजरे हुए कल दिया गल्ला होणगियां, आने वाले कल की गल नहीं करनगे, क्योंकि आने वाले कल विच ते मौत है, नदी किनारे रुकड़ा किचड़क बंदे दी, वो भविष्य की गल नहीं करनगे। मौत अजे जवान तो दूर है, बच्चे तो दूर है, इत्थे चिंता है भविष्य दी। पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह जी का फरमान है कि बीत गई दी याद पई हड्डानों खावे, आउण वाले दा सहन पिया मन नूं तड़फावे। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने जिहड़ा समा लंघ गया है ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही है, और जिहड़ा समा आण वाला है वो चिंता दी पंड मेरे सिर ते पई है। बीत गई दी याद पई हड्डानों खावे, आउण वाले दा सम सहन पिया मन नूं तड़फावे। भविष्य की चिंता माजी दिया यादा का बोझ सिर ते पै गया, गुजरे हुए कल दिया यादा आने वाले कल की चिंता ते अज का कोई फिक्र नहीं। पता है अज किस तरह लंघ जाता है, बच्चों का जवानों का बुढ़िया का अज किस तरह लंघ जाता है, गुजरे हुए कल दिया यादा दे अज लंघ जाता है, आने वाले कल की चिंता दे अज लंघ जाता है, सारे का लंघता है। कभी बगौर मुताला कर लेना, अज लंघ गया कल की चिंता दे, अज लंघ गया गुजरे हुए कल दिया यादा दे, अज की कोई फिक्र नहीं अज नूं किवें बतीत करना है, अज नूं किवें लंघाना है। भाई साहब भाई नंद लाल, यकदम बखेश राह ना बुरदम की सतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राए गां गुजस्त। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे जिहड़ा दम मेरे मूंह च सी मैं उहदी चिंता ही ना कीती किहड़े पासे लाणा, ते दम लंघ गया मूंह दे चो निकल गया उहदियां यादां। जिहड़ा दम अजे मेरे मूंह च आया ही नहीं उहदी चिंता। ते भाई जी कहिंदे इस तरीके नाल जिंदगी राए गां चली गई, जिहड़ा दम मूंह च आया ही नहीं उहदी चिंता, जिहड़ा दम लंघ गया उहदियां यादां, ते जिहड़ा दम मूंह च पिया उहदी कोई फिक्र नहीं उहनूं किहड़े पासे लाणा है। दम दम करके जिंदगी सारी रायगा चली गई, यकदम बखेशरा न बुरदम के की सतम, मैं उस दम दी विचार ही ना की जिहड़ा मेरे मूंह च सी ए की है। यकदम बखेशरा न बुरदम के की सतम, गुरु नानक देव जी महाराज ने एवें नहीं कहा कि दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए, मैं दम नूं नहीं व्यर्थ जान देंदा, जो दम मेरे मूंह च है उन्हों लेखे लाना है, जो श्वास मेरे मूंह च है मैं उन्हों लेखे लाना है। दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन हर दम एक प्याला है, मूह दे च जड़ा दम है प्याला है। ते सतगुरां ने यह जफरनामे दे राही औरंगजेब नू चेतावनी कराई है वे तेरे स्वासां दे प्याले सखणे ने, इहदे च कुछ भी नहीं। लबा लब्बे कुन दम ब दम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। ऐ औरंगजेब, जे दो जहाना दियां विपतावां दा अंत करना चाहना है तां दमां दे श्वासां दे प्याले विच रब दी याद भर लै ते फिर पी। प्याले तेरे सखणे ने बिल्कुल खाली ने, ऐसे वास्ते टकरा रहे ने। जिन्हां दे दम बहुत खाली होंदे ने बड़ा टकराव होंदा, बड़ा तनाव होंदा। तो दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। भाई नंद लाल कहने यकदम बखेशरा न बुरदम के कीस दम। ऐ जो दम मेरे मुंह च है की है, इहदी मैं फिक्र ही नहीं कीती, इहदी मैं चिंता ही नहीं कीती, इहदे बारे मैं सोचिया नहीं है की है। लंघ गया उहदियां यादां, जिहड़ा आया नहीं उहदी चिंता। बगौर मुताला करके वेखना, जिहड़ा कल अजे आया ही नहीं उहदी चिंता, ते जिहड़ा कल लंघ गया है उहदियां यादां। दस बंदे बैठे अमन किधरे, या माजी दियां यादां दी गल चलेगी या भविष्य दी चिंता दी गल चलेगी, अज नूं बर्बाद कर देंदे ने। भी अज दी कोई गल करो, हुण दी कोई गल करो। पिदरम सुल्तान बोल, प्यो उत्थे मेरा सुल्तान आउंदा सी, तूं की है, सवाल ते है अज की है। और मनुख या माजी नाल जुड़िया है या जुड़िया है भविष्य नाल। जिहड़ा भविष्य नाल जुड़िया बहुता बड़ा चिंता तुर होवेगा, बहुत चिंता तुर होवेगा। ते जिहड़ा माजी दे नाल जुड़िया है, गुजरे हुए कल नाल जुड़िया, बड़ा खतरनाक होवेगा, बहुत खतरनाक होगा, बड़े अनर्थ होंगे। अज का फिक्र नहीं, अल आने वाले कल की कोई गल नहीं, गुजरिया हुई यादा नाल जुड़े हुए। गुजरे हुए समय को संस्कृत में कहते हैं भूतकाल, गुजरे हुआ समा। अज जिहड़ा है इहनू कहते हैं वर्तमान, आने वाले नू कहते हैं भविष्य। जो लंघ गया है उहनू कहते हैं भूतकाल, जो लंघ गया भूतकाल। भूतकाल विच जीण वाले मनुखां नूं ही कहा गया सी भूत ने, इन्हां तों डरदे रहो, भूत ने, अज दी कोई फिक्र ही नहीं। जिहड़ा कल लंघ गया बस उहदियां यादां। और इतना खतरनाक भविष्य दी चिंता विच जिहड़ा जीण वाला है उहनूं नहीं आखेगा। जिहड़ा माजी दी यादां विच जी रहा बड़ा खतरनाक है, बड़ा अनर्थ करेगा, क्योंकि अज दी कोई फिक्र ही नहीं, आने वाले कल की कोई चिंता ही नहीं। माजी दी यादां नाल जुड़िया भूतकाल। कहिंदे जिहड़ा वर्तमान विच जीवदा है, अज विच जीवदा है, वह देवता है। जिहड़ा भविष्य की चिंता विच जीवदा है वह इंसान है। जिहड़ा माजी दी यादां विच जीवदा है भूत है। इस तरीके नाल गिणती की है साडे देश दे ऋषि मुनियां ने, जो अज दे च जीवदा है, अज नूं लेखे लाना है, अज नूं सफल करना है। आने वाले कल की चिंता नहीं, जैसा होएगा देख लेंगे। गुजरे हुए कल दियां यादां दा बोझ नहीं, कानू बोझ ढोना, लंघ गया सो लंघ गया। अज विच जिहड़ा जी रहा, भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र किया है, वर्तमान विच वर्तदा, जिहड़ा गुरसिख है वह वर्तमान विच वर्तदा, अज विच, अज नूं सफल करना। अब ना भजस तो भजस कब भाई, आवे अंत ना भजे आ जाए। अब हुण कल दी गल क्यों करदा, ते जिहड़ा अज नहीं भजन कर सकिया की कल करेगा। जिहड़ा अज दी कदर नहीं कर रहा, ऐसे बंदे कोल या माजी दियां यादां होणगियां या भविष्य दी चिंता होगी। भविष्य दी चिंता विच जीण वाला मनुख, वर्तमान विच जीण वाला देवता, माजी दियां यादां विच जीण वाला भूत। हिंदुस्तान दी तरीके नाल है कि प्राचीन समय विच कोई हर चौथा पंजवां घर किसी देवते दा हुंदा सी। समय ऐसा लंघिया गिणती की 35 करोड़ देवतियां दी सिलसिलावार। हर तीजा चौथा घर किसी देवते का, जो अज की फिक्र करता सी, अज दे चीना, अज नूं सफल करना। कोई कल की चिंता नहीं, कोई गुजरे हुए कल दियां यादां नहीं, कोई पंड नहीं सिर ते, अज विच जीना। इस तरह के बंदियां नूं किया गया देवता फरिश्ता। फिर कोई 8-9 घरां तो बाद कहिंदे इक अद घर भूत दा हुंदा सी, भूतां दे दर्शन आम हो जांदे सन, देवतियां दे दर्शन आम हो जांदे सन। कई दफा इस तरह की गल चल पाए तो लोग कहने ना अजकल देवतिया के दे दर्शन, ना अजकल भूतों के दर्शन। तो मैं एक निकी जी अर्ज करता हूं कि ठीक है, देवतिया दे पैदा होने वास्ते माहौल जमीन वैसी नहीं रही, सवार नहीं पेगी, शिंगार नहीं पेगी, और है ने तो किधरे किधरे बहुत घट। क्यों कुछ दिन चलो देवतिया की तो यह गल, पर जे पहले 8-9 घर भूतां दा हुंदा सी ते हुण भूतां दे दर्शन क्यों नहीं? पहले बड़ी भूतां दी गल सी, उहनां नूं मैं कहिंदा हुंदा भूतां दे दर्शन करन दी लोड़ ही की है? सारे भूत हो जाण ते भूतां दे दर्शन करन दी की लोड़? सारे भूतकाल विच जीवन, हर बंदा ही भूतकाल दी पंड चुकी बैठे। मैनू कई चिट्ठियां इस ढंग दी आंदियां, किधरे MLA रह गया होवे ना, लिखिया हुंदा XML है, XMP रहा है कदी, पर भूत पिछे चंबड़िया है। अज की है, तू अज दी फिक्र कर, XMP लिखदा, इत्थे तक भी लिख देना एक्स मैंबर गुरुद्वारा कमेटी, इत्थे तक भी लिखिया भूत चंबड़िया है पिछे। ये जिहड़ा भूतकाल है ना, जिहदे पिछे चंबड़िया है, और 10 बुढ़िया को कभी बैठ के वेख लेना, हर मनुख ने बुढ़ा होना है, मैं भी होना, और बुढ़ेपे के आसार चेहरे से झलकन लग पे, कोई निंदा ना समझ लेना। वो माजी दियां यादां, भूतकाल दियां यादां विच कल्ला पै कर दे, वेख लेना बिल्कुल भूत बैठा जी। असी इंज होंदे सी जवानी दी, असी इंज बचपने च होंदे सी, अज की हो तुसी, हुण की हो? अज दी फिक्र करो, अज नूं लेखे लाओ। यकदम बपेश रा न बुरदम के की सतम, आ जड़ा दम तेरे मूंह दे च है, इनू किसे लेखे ला? ते माजी दी याद बन जाएगा, और जो लंघ गया ते फिर ओदियां यादां दे च जीवे, ते जिहड़े कोल दम ने ओह वी गवावे, ये कोई अकलमंदी ते नहीं। जिहड़ा दम अजे आया नहीं ओदी चिंता, पता नहीं आवेगा कि नहीं, अज मैं जी सकिया कल पता नहीं जी सकांगा कि नहीं, अज मैनू खुशी मिली है पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं, अज मैनू लाभ होया है पता नहीं कल लाभ होना है कि नहीं। मनुख का यह सुभाव है। तो आने वाले कल विच जीण वाला जिहड़ा मनुख है, वह चिंता तुर लाजमी होगा, चिंता की पंड उस दे उत्ते होगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज का तो फरमान है, मैं जिथे तक देखदा मनुख दे कोल चिंता है। दो शब्द ने संस्कृत दे, चिंतन ते चिंता, और दोवें शब्द बड़े प्यारे ने। चिंतन जिथे परमात्मा की याद है, चिंतन है, उथे चिंता नहीं, ते जिथे चिंता है समझ लेना चाहिए उथे चिंतन कोई नहीं। चिंतन का कम है कि वह चिंता का अंत कर देंदा। साहिब अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चिंतत ही दिसे सब को, मैं जिथे तक देखदा चिंता ही चिंता, सारा जगत चिंता दे, पता नहीं आने वाला कल कैसे होवेगा। चिंता रोग पशु पंखियां नूं नहीं है, कीड़े मकोड़ियां नूं नहीं है, पशु पंखी वर्तमान विच जीवदे ने, पर बोध नहीं है, ज्ञान ना होने कारण करके इन्ना सोहना जीवन जीवदे होया भी उच्चे नहीं हो सकते, बौद्धिक बल नहीं है, ज्ञान नहीं है। मनुख को ज्ञान है, बुद्धि है, सूझ समझ है, पर अज विच जीवन की जांच इस नूं नहीं आई। चिंता आने वाले कल विच, चिंतत ही दिसे सब कोए, साहिब ने जिथे तक मैं देखदा चिंता, इहदा इलाज की है? चेते एक तहीं सुख होए, जे एक दा चिंतन है तो महाराज कहने उत्थे चिंता नहीं होगी, फिर दा हौला फुल होगा, आनंद विच होगा। चिंतन दा कम है कि को चिंता दी पंड नूं उतार के परे सुट देना, ते जिथे चिंता ही गई उत्थे माजी दियां यादां ने की करना है, क्योंकि सियाणा मनुख माजी दियां यादां विच अज नूं बर्बाद नहीं करता, अज नूं जाया नहीं करता, अज नूं नष्ट नहीं करता। भाई साहब भाई वीर सिंह ने मनुख दे मन नूं सही पढ़ के साफ कह दिता है, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़पा। तो कल विच जीण वाला जिहड़ा मनुख है उहदे कोल चिंता होवेगी, कल विच जिहड़ा जीण वाला मनुख है कोई सियाणा नहीं है। इतनी मैरज करते हैं, उहनूं गुरबाणी ने बिल्कुल सियाणा नहीं मनिया, जो कल विच जी रहा अज विच जी, अज नूं सफल कर, अज लेखे नहीं ला सकिया, अज तेरा ठीक नहीं, ते इस अज ने ही माजी बनना है, तो माजी ते खराब हो गया। अज तेरा ठीक नहीं ते अज ही बुनियाद भविष्य दी है, ते बुनियाद ही ठीक नहीं भविष्य कित्थे ठीक, तू अज नूं सवार। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थां ते दुनिया दे एक पुरश नाल बहुत वड्डा इंसाफ कीता है, साडे देशवासी इंसाफ नहीं कर सके रावण दे नाल, भंडे है गालां कढ़ियां ने, लेकिन उसका एक पहलू बड़ा रोशन है, उसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी ने किया। समन जो इस प्रेम की दमके होती साट, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, चौबोले महला पंजवा। कहिंदे ने जद मैदान जंग रेच रावण हार गया ते मूर्छत होके गिर गया, ये शिवजी का उपाशक सी, उंज राम भी शिवजी का उपाशक सी। शिवजी की प्रसन्नता हासिल करने वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे रावण ने अपना सीस कट के शिवजी के अगों रखा, बिना मंगे ही, शिवजी ने मंग नहीं की थी। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने का, ये कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी, ते इनू पता सी धन दे नाल संपदा दे नाल ये रब्बी इश्क दे सौदे नहीं आउंदे। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, उन्हें सीस कट के अगों रख दिता। कहिंदे शिवजी ने सीस जोड़िया, लंबी चौड़ी ये गाथा है। मंगया नहीं शिवजी ने, बार बार सीस रावण ने भेट किया, बड़ा त्यागी है, बड़ी गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पांच सीस की मंग की थी, सी अधे बैठे भज गए सन, ठीक है पांच तैयार हुए। और एक होर भी निक्की जी अर्ज करदे हां, चर्चा बड़ी है, सतगुरु ने बकरे झटकाए, करीबन करीबन लिखारियां ने इस ढंग नाल लिखे है, पर एक मैं निक्की जी अर्ज करदे हां, सारा काम मेरे पातशाह ने तंबू च कीता सी, पर्दे च कीता सी, ते जिस काम दे उते सतगुरु ने पर्दा पा लिया है, सिख नूं जरूरत नहीं करनी चाहिए वो पर्दा चुकन दी। और जिस ते पर्दा गुरु पा लवे, सिख दी समर्था ही किथे कि पर्दा चुक लवे, उहदी ताकत ही किथे। सिख अपनी श्रद्धा नूं इत्थे ही कायम रखे कि गुरु ने पंज बकरियां दे सीस नहीं मंगे, पंज मनुखां दे सीस मंगे। अपनी श्रद्धा इत्थे टिकाणी है, अपनी श्रद्धा नूं इत्थे कायम रखना। कहिंदे ने शिवजी दे अगों बार बार रावण ने अपना सीस भेट किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी कुर्बानी का, इसकी शफकत का जिक्र करते हैं, वरना करीबन करीबन साल दे साल रावण नूं साड़ी जांदे ने, फूकी जांदे ने। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, अज हार गया राम दे हथों, तीर लग्या सीने च, गिर गया मैदाने जंग च, आखरी दमा दे है। ते राम अपने छोटे भरा लक्ष्मण नूं कहिंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, बड़ा कीमती, ਇਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਦੇ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ, ਅਜੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਅਦਕੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ 100 ਕਦਮ ਮੈਂ ਚਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ? ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਮ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਮੇ ਮੌਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਆ ਇੱਕ ਦਮੇ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੇਤੇ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ। ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਣ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਯਤੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੰਤ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਕੁਮਲਾਏ ਨਾ, ਮੁਰਝਾਏ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਕੁਮਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੁਖਤਸਰ, ਜਦ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਬਗੀਚਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਝਾੜ ਪਾ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਦੁਖਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਤੁਲਸੀ ਬਿਰਵਾ ਬਾਗ ਕੇ ਸੀਚਤ ਹੂੰ ਕੁਮਲਾਏ, ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਤੋ ਪਰਬਤ ਪਰ ਹਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਚਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਚਦਾ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, तुलसी कहने जिहड़ा रब्बों ही कुमलाया उन्हों मैं कित्थों हरा भरा करा, और जिहड़ा इस तरीके नाल राम दे भरोसे ते जीण दे निश्चिंत ने कुमलाना है ही नहीं। कहने विद्या गुरु ने तुलसी नूं गलवकड़ी च लिया, कहन लगे तू वर्तमान दे जीण वाला मनुख है, तू अज दे च जीण वाला मनुख है, तू ते कोई महानता अपने विच छुपाई बैठा सी अज प्रगट होई है तेरे च, तू बहुत वड्डी गल अपने विच छुपाई बैठा सी और मैं देखांगा तेरियां इन्हां खुशियां नूं तू जीवन भर कदी चिंता तुर नहीं होएगा, क्योंकि तू अज दे च जीण वाला है, अज नूं सफल करदा, अज दी गल करदा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे जिहड़ा गुरु का सिख है वह वर्तमान विच वर्तदा, अज दे च वर्तदा, अज नूं लिखे लांदा, अज नूं सफल करदा। ऐसा नहीं कि बीत गई भी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़पावे। तो चिंता बहुती होंदी है रिजक दी, ते रिजक दा संबंध है शरीर नाल, अन्नमई कोश नाल, ते अन्नमई कोश दी चिंता करी जानी कहिंदे ने, और इसे चिंता दी जिंदगी बतीत करनी कि पशुआं तो भी थले, पंछियां तो भी थले। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, परिंद है ना गिरह जर, दरख्त आप आस कर, बेहंद सो ही एक तू ही एक तू ही। तिलंग मल्ला पहला साहब कहिंदे ने, मैं हैरान हाँ कि ये जिहड़े पंछी ने अज दाणा दुणका चुग के आए ने अपने घोंसले च, कल की कोई चिंता ही नहीं, पता नहीं कल लभना है कि नहीं। परिंद है ना गिरे जर, दरख्त आप आस कर, देहंद सो ही एक तू ही एक तू ही। हौ बलहारे किन्ना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। बाबा फरीद वर्तमान विच जीवदियां, पंछी अज विच जीवदन, पंछियां कोल चहचहाना है, मुस्कुराना है। जिहड़े गीत पंछियां कोल ने, बंदे कोल ते सिवाय रोणियां ते होर है कुछ नहीं, किसी कोल बैठ के वेख लेना सिवाय रोणियां तो होर नहीं। गीत कित्थे ने बंदे कोल, चहचहाना कित्थे है, कुछ भी नहीं है, रोने ही रोने हैं। किसी कोलों भी उहदी गठड़ी खोल के वेख लेना फिर पता चलेगा। सुभाविक एक बंदा पूछ लेंदा भी तेरा की हाल चाल है, अगला कह देंदा बड़े आनंद च हां, भावें घरों रोंदा पिटदा आया होवे, एवें ही कह देंदा, सुभाविक ही कह देंदा। आनंद प्रसन्न कित्थे, भी तेरा की हाल चाल है। ते जे अगला हाल चाल सुनाण लग पवे तेरे कोल वक्त है, तू भी इवें सरसरी पूछ लिया उहदे कोल तेरा की हाल चाल है। अगला हाल चाल सुनाण लगे मनुख कोल वक्त ही नहीं, ते अगला हाल चाल सुनाएगा ते सिवाय रोणियां दे होर कुछ नहीं, चहचहाना नहीं होवेगा, मुस्कुराना नहीं होवेगा, खेड़े नहीं आउणगे। इह खेड़े पंछियां कोल है, मनुखां दे कोल कोई नहीं। तो अन्नमई कोश की सिर्फ फिक्र करी जाणी और इसे ही तल ते जीवना। कहन इह पशु समान है, अन्नमई कोश अन्न पाणी दे आसरे ते जो चलदा है, साडे त्रैमण देहुरी चले पाणी अन्न। इस शरीर दे थले एक होर शरीर है जिसनों कहिंदे ने प्राणमई कोश, ਉਹ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਖੇਡੀਏ। ਹੋਲੇ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ। जे गंदा भोजन नहीं चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए, तो गंदी हवा भी नहीं चाहिए। अन्नमई कोश वास्ते तेनू साफ सुथरी गिजा चाहिए है, प्राणमई कोश वास्ते तेनू साफ सुथरी हवा चाहिए। हर वक्त अठे पैर मनुख तंग ते सुखड़ी हवा विच रहण वाला मनुख उहदा प्राणमई कोश रोगी हो जाएगा, उहदे तरह तरह दी
बीमारियां पैदा हो जाणगियां। धर्म ग्रंथां दे कथन अनुसार, और इतनी मैं अर्ज कर रहे हां कि दोहां दी खोज अपने अपने ढंग दी है, साइंस दी खोज अपनी है, धर्म दी खोज अपनी है। प्राणमई कोश नूं अगर ताजी हवा ना मिले, मनुख दे अंदर बहुत कुछ सफुरती दे ताजगी दे जड़े आजाद ने वह मध्यम पै जाणगे, खत्म पै जाणगे। ताजी हवा चाहिए और प्राणमई कोश इस साफ सुथरी हवा दे आसरे ते जींदा है। गंदा भोजन खा के भी पेट भरिया जा सकता है, भुख मिटाई जा सकती है। गंदी हवा ते बंद हवा दे जी के भी प्राणमई कोश नु जिंदा रखिया जा सकता है, पर रोगी होगा, तरह तरह के रोग पैदा हो जाए। प्राणमई कोश तो बाद तीसरा कोश मने है मनमई कोश। ये किस तरह जिंदा है? विचारां दे आसरे ते, इनू विचार चाहिए। मन जिंदा विचारां दे आसरे ते, पुरनियां दे आसरे ते। तो जिथे अन्न पानी चंगा चाहिए अन्नमई कोश नू, हवा साफ सुथरी चाहिए प्राणमई कोश नू, मनमई कोश नू चंगे विचार चाहिए। तुरक तरीक खजानी है हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछुक पड़िए। तुसी कथा सुन रहे हो कि अन्नमई कोश की जरूरत नहीं, इहदे नाल पेट नहीं भरना, ये प्राणमई कोश की भी लोड़ नहीं, ये मनमई कोश की लोड़ है। ये तीसरे शरीर की गजा, ये पहले ते दूजे शरीर की गजा नहीं। पर जिस तरह गंदा भोजन खा के, जहरीला भोजन खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, तिवें मनमई कोश नूं गंदे विचार दे के भी रजाया जा सकता है। जिवें एक नॉवल पढ़ रहे गंदा जासूसी और जिनसियात दे नाल भरिया, तो विचार ने उहदे विच भी पढ़ रहे। हुण मनमई कोश नूं ये विचारां मिल रही, मनमई कोश त्रिपत हो रहा, मनोरंजन हो रहा। एक पढ़ रहा है धर्म ग्रंथ की कोई व्याख्या, एक पढ़ रहा है गुरु दियां साखियां, एक पढ़ रहा है जन्म साखी दसां गुरुआं का इतिहास, सूरमियां दियां कथावां एक पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है जिनसियात दे नाल भरिया होया गंदा साहित्य। कहिंदे ने पिछले 3000 साल दे च इतना गंदा साहित्य कतई नहीं छपिया सी जिहड़ा इन्हां 50 सालां दे छपिया। कहिंदे ने मनुख कितना गंदा हो गया है, मनुख दा मन किस तरह पता चलेगा? वेख लेना मनुख दा मन कितनी गंदी गिजा खा रहा है, कितना गंदा साहित्य छप गया है, कितने नावल, कितने जिनसियात दे नाल भरे हुए मैगजीन, और मनुख यही खिला रहा है अपने मन। बड़े बड़े गुरमुख भी मैं अपने देश विच देखिया फालतू समझ फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं और कुछ नहीं, गंदियां किताबां। आए फिल्म एक्टर कदों जमी, किवें जी रही है, कदों मरेगी, निकम्मे वक्त अपना जाया कर रहे, समय में जाया कर। ओ जासूसी कहानियां नावल दे जिन्हां दा जिंदगी दी हकीकत नाल कोई तल्लुक नहीं, सिर्फ मन नूं गजा दित्ती जा रही है। तो गंदा पानी पी के भी प्यास बुझाई जा सकती है, गंदी गजा खा के भी भुख मिटाई जा सकती है, गंदे विचारां नाल भी वक्ती तौर ते मन नूं शांत किया जा सकता है। मन विचार मंगदा है, मनमई कोश नूं विचार चाहिए ने, जैसे प्राणमई कोश नूं हवा चाहिए है, अन्नमई कोश नूं अन्न पानी चाहिए है, उसे तरीके नाल मनमई कोश नूं विचारां चाहिए। विचारां तो बिना नहीं जी सकता। हुण इत्थे कोई भी विचार ना गुरुद्वारे चले बंदा नहीं बैठ सकेगा, मन नूं कुछ विचार चाहिए। तुरक तरीक खजानी है हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछु पढ़िए ज्ञान। कबीर कहिंदे ने मन नूं समझाउण वास्ते कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो मुसलमान है कुरान पढ़, तो हिंदू है कुरान पढ़, धर्म ग्रंथां दा पाठ पठन कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, पोथी पुराण कमाइए भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए ए तेल दीवा इउं जले कर चानण साहिब तौ मिले। पोथी पुराण कमाइए, पढ़ तू पोथियां, पढ़ तू धर्म ग्रंथां, बा बाणियां कहानियां पुत सुपुत करें पढ़ तो इन्हां कहानियां नूं, बाबे दियां कहानियां नूं, बुजुर्गां दियां कहानियां नूं, भगतां दियां कहानियां नूं पढ़। कहिंदे ने गंदा भोजन खाण दी आदत पै जाए फिर साफ सुथरे भोजन विच रस नहीं मिलता, आदत आउंदी है। तुसीं आखोगे ऐसा भी है, ऐसा भी है। कौवे नूं गंदगी खाण दी आदत है, वो साफ सुथरी चीज नहीं खा सकता। कौवा कहां कपूर चराए, कह बिसी अरको दूध पिया। कौवे दे मुंह दे कोई चंगी चीज नहीं होगी, सुगंधित चीज नहीं होगी, गंदियां चीजा आनगी, आदत बन गई, उहदे जीवन का सुभाव बन गया। कई मनुखां दे मन का सुभाव बन जाता है, नावल ते पढ़ सकते हैं 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 मिनट वह जपजी साहब का पाठ नहीं कर सकते। मैं कई बंदे ऐसे मिलन, मैं देखना पोतरे नाल गल्लां करी जाने छे छे घंटे, तो कह दो भाई 10 मिनट वास्ते जपजी साहब का पाठ कर लो। कहने ज्ञानी जी दिमाग कमजोर है, मत्था दुखन लग पैंदा, नजर कमजोर है, छे छे घंटे खपद मत्था नहीं दुखता, खपी जाते पोतरे नाल बोली जाते, पोतरे नाल 6 घंटे बोल सकता है, 10 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता, 8-8 घंटे यार दोस्तों नाल बोल सकता है, 15 मिनट गुरु नाल नहीं बोल सकता। गुरबाणी पढ़नी, गुरु नाल बोलना, इतनी मैं अर्ज कर दे। सतगुरु के बचन पढ़ने ये गुरु नाल बोलना, ये गुरु नाल वार्तालाप है, ये गुरु दे नाल चर्चा है। इस वास्ते मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि बाणी का पाठ भी जाप है, बाणी पढ़नी नहीं जपनी है, ये पढ़ना भी जपना है, पढ़ी जाओ, नहीं अर्थ बोध की समझ कोई जरूरत नहीं, इनू पढ़ी जाओ, ये पढ़ना भी जपना है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाए, इतने नाम है, इतने जपना है। अर्थ बोध की कितनी तय विच तू जाएगा, कितने तक चला जाएगा। कहते ने भाई साहब भाई मनी सिंह ने जब 22वीं वार का तर्जमा करके टीका करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पेश किया, महाराज मैं बाणी के अर्थ किए ने, सतगुरु बहुत खुश हो, कहन लगे तू साडा ज्ञानी सिंह है। उत्थों ये ज्ञानियां दी प्रथा चली, इस तों पहले नहीं सी शब्द, वध तों वध गुरु घर विच भाई साहब की डिग्री सी, भाई साहब कोई बड़ा भजनीक होवे, पूजनीक होवे, संजम नाल रहिंदा होवे, कहिंदे सन भाई साहब। ज्ञानी सिंह दी प्रथा चली भाई मनी सिंह तों, और ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन। साहब बड़े प्रसन्न हो, संत शब्द वरत्या जाता सी गुरुआं वास्ते, इतनी मैरज कर गया। प्राचीन समय च महान हस्तियां नूं भी संत नहीं आख्या गया, भाई मरदाना,
भाई बाला, कोई संत मरदाना नहीं। जिहड़ा गुरु नानक नूं कीर्तन सुणांदा है ओह भी संत मरदाना नहीं, भाई मरदाना। भाई गुरदास इन्ना गहरा फलसफा सिकी दा देण वाला भाई, भाई मंज, भाई बनो, पंज प्यारियों के नाल भी भाई शब्द, भाई दया सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, संत नहीं, भाई मनी सिंह यह शब्द है, भाई तारू सिंह है। कुछ पूजनीक हस्तियां के नाल बाबा शब्द जुड़िया, जैसे बाबा बुढ़ा, शहीद बाबा दीप सिंह, संत शब्द गुरुआं वास्ते सी। इहदा सबूत मैं दिया कि संत शब्द सिर्फ गुरुआं वास्ते सी। साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताएं, बिलग करे चा त्रिक के न्याय, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन, संत प्यारे जी। संत को गुरु रामदास जी नूं कह रहे हैं, जब दर्शन हो गए तो भाग हुआ गुरु संत मिला है, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ये संत शब्द गुरु रामदास जी महाराज वास्ते वरत रहे हैं। भगत कबीर नूं कहा गया थोड़ा संत कौन है, क्योंकि मैं घूम करके देखा विदेशों लोगों के संत ने गुरु नाल ते कोई कोई जुड़े, साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे, साडे फलाने बाबे, गुरु नानक कुछ भी नहीं, गुरु गोबिंद सिंह कुछ नहीं, इहदी गल मूहो निकलदी नहीं। कोई किसे दा सिख, कोई किसे दा सिख, गुरु नानक दा सिख ते कोई कोई, गुरु ग्रंथ साहब दा सिख ते कोई कोई नहीं। तो चर्चा कुछ होर दी होर चली है, शब्द नाल सतगुरु ने जोड़िया सी, मनुख व्यक्ति तो उच्चा नहीं उठ सके, अजे भी उसे तरीके नाल ये प्रथा चली हुई। कबीर नूं कहन लगे तेरा कोई संत है, कबीर कहंदे ना हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे ओ हमारे माथे कायम, और हमरे निकट ना आवे, और संत मेरे नेड़े ना आवे, वो जिहड़ा मेरा अकाल पुरख है परिपूर्ण परमात्मा वो संत है, मैं उस दे नाल संबंध जोड़ लिया, सारियां दी मैं सेवा करनी है, सत्कार करना है, संत ते मेरा अकाल पुरख है। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, जैसे जैसे सिमरन करदे आ, भजन करदे आ, प्रकाश आउंदा है, मनुख व्यक्ति तो टुट के शक्ति दे नाल जुड़दा है, जैसे जैसे बंदा अंधेरे च भटकदा है तो बंदियां नाल जुड़दा है, मनुखां नाल जुड़दा है। और ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ना समझना कि गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरियाई गद्दी
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिते, नहीं गुरु ग्रंथ साहब पहले दे गुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो पहले दे बचन मौजूद ने, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह तो पहले दे मौजूद ने। शब्द गुरु सुरत धुन चेला के पहले पातशाह दे वाक ने। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौराना, इत शब्द पहले दे मौजूद ने। और कहो कबीर मैं सो गुरु पाया जांका नाम विवेको, जिदा नाम है ज्ञान, जिन्हू कहने ज्ञान, उस गुरु की मैनू प्राप्ति हुई, उस विवेक की मैनू प्राप्ति हुई। और वास्तविक जिंदगी बदलती है ज्ञान, जीवन बदलता है ज्ञान, जीवन में क्रांति आती है ज्ञान देना। तो मैं अर्ज कर रहा सी गुरु घर सब तो वड्डियां डिग्रियां सन, भाई साहब ज्ञानी जी बाबा जी संत शब्द गुरुआ वास्ते से या भगत अकाल पुरख वास्ते वरतते सन। बाद देच पंथ ने फैसला कर लिया सी ये लकब जोड़िया सी बाबे अतर सिंह नाल, सिर्फ इस वास्ते निर्मले उदासी साथों टुट गए सन, संत संपदा साथों टुट गई सी कुछ, ते सहजे सहजे आम लोग इधर उधर धक्के खाण लग पे सन। तो बाबा अतर सिंह मस्तुवाने वाले नाल पंथ ने फैसला करके संत शब्द जोड़िया सी, संत बाबा अतर सिंह मस्तुवाने वाले। लेकिन वो रो पे सन जद लकब उन्हां नाल जोड़े, जारो जार कहण लगे नहीं अनर्थ कर रहे, पर पंथ दा फैसला। और दिलों उन्होंने कभी नहीं चाहिया सी मैनू कोई संत आवे, वो भाई करके बाबा करके राजी सन। ते खिमा करनी अज जिन्हां कोल भाई साहब वाली भी कोई गल नहीं, ते जिन्हां नू भाई साहब कहना भी भाई साहब की तुहीन करनी है, उन्हां नू लोकी संत ते गुरु जान के पूजी जांदे, बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे पुरखा तू ते साडा ज्ञानी सिंह है, बड़े सोहने अर्थ कीते इन तो। मनी सिंह गल पुर पई, कहन लगा महाराज तुसी आप अर्थ कर जाओ, जे मैं इतने कीते ते आप ते बड़े डूंगे अर्थ करोगे, ते जिथे तुसी बीड़ लिखवा दिती है दूसरी उत्थे अर्थ भी कर जाओ, ताकि अर्थां संबंधी झगड़ा अगे ना हो, तुसी करो। सहज कहन लगे मनी सिंह ए नहीं, इते आप अपनी बुद्ध है जेती, बनत भिन्न भिन्न तोए ते थी, कसम दे बोल ने कसम दी बाणी है, अकाल पुरख दे बचन ने, जिड़ा जितना डूंगा चला जाएगा उन्हों उतने कीमती रतन लग पेंगे, थे कोई नहीं इस दी। मैं अर्थ करा तो उही अर्थां ते मनुख रुक जाएगा, इते बाणी दी थै बना देंगे असी, तै तै नहीं है इस दी। इते जितना गहरा कोई चला जाएगा उतनी गल होवेगी। और आप सुन के हैरान होवोगे, पहले निर्मलिया ने टीका किया सी कुछ बाणियां दा, सिख जगत विच बड़ियां धूमां पै गईयां बई कमाल हो गई, पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने जपजी साहब का टीका किया, बड़ी गल पंडित गंगेश्वर आनंद ने, स्वामी गणेशा सिंह ने, पंडित गुलाब सिंह जी ने, ये निर्मले महात्मा सन, इन्होंने अर्थ किए, बड़ी धूमां पै गई। फिर फरीदकोटियां दे टीके सामने आए, महाराजा फरीदकोट ने गुरु ग्रंथ साहब का टीका कराया, सिख जगत के महापुरुष कट्ठे करके विद्वान कट्ठे करके, और फरीदकोटियां दे टीके की बड़ी धुम पै गई। हुण पंजाब गौरमेंट ने दोबारा छापिया चार जल्दां विच, बड़ी चर्चा हो गई बई ये महान गल है, उहदे च भी एक एक शब्द दे अठ अठ अर्थ सन। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी दियां कुछ पोथियां टीके दे रूप विच सामने आई, लोकी फरीदकोटियां नूं भुल गए, भई नहीं कौन अठ अठ अर्थ पढ़े, ये ठीक ने भाई साहब ठीक ने। फिर प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका आ गया और लोकी आशस कर उठे कि इस ढंग नाल भी अर्थ आउंदे, बहुत गहरे तल नूं छोया भाई साहब भाई साहिब सिंह ने, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने बहुत गहरे अर्थ किए और एक एक अर्थ किया और व्याकरण दृष्टि अनुसार किया, व्याकरण नूं सामने रख के गुरबाणी व्याकरण नूं सामने रख के। अज ये गल छाई हुई है, कल कोई होर आ जाना है, परसों कोई होर आ जाना है, बाणी का कोई तय नहीं है, इतनी मैरज कर रहा, कोई दावे नाल नहीं कह सकता, बस इतनी गल है, होर अगे कुछ भी नहीं।
बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इति आप अपने बुध है जेति वर्णत भिन्न भिन्न तो इति बाणी पढ़नी नहीं, बाणी जपनी है। नहीं अर्थ तो बौद्ध की समझ कोई जरूरत नहीं, पढ़ी जा जपनी है। इति मंत्र ने, इति गुरु दे वाक ने। ये पढ़दियां भी सतगुरु नाल जुड़ जाओगे, ये पढ़दियां भी अकाल पुरख नाल जुड़ जाओगे, क्योंकि खसम की बाणी है। जो दोहराओगे तो मालिक नाल बोलना है, गुरु नाल बोलना है। अंदर श्रद्धा चाहिए, इस बाणी ने जोड़ देना है। अंदर भावना चाहिए, गल बन जाएगी। मनमई कोश में विचार चाहिए, इस तो बिना मन जिंदा नहीं। मन तो मर जाता है जब विचार अंदर कोई ना हो, निर्विचार हो जाता है। निर्विचार का मतलब मन मर गया। तो मन में विचार चाहिए, मनमई कोश विचारों के आसरे से जिंदा है। कि जे अनमई कोश में चंगा भोजन ना दिता तो माड़ा, पेट से भरना है। तो जे चंगे विचार ना मिले तो फिर माड़ है। चंगे विचार दे थोड़े ही केंद्र ने, महापुरुषों के ग्रंथ ने, और गुरुद्वारा है, सत्संग है, यही है ना। और कितों लोगे चंगे विचार? और इन्हों थावान तो भी कोई माड़े विचार लवे, माड़िया ही गल्लां करे। मैं लवज फिर दोहरा दें, बहुत बड़े पाप के भागी बनणगे जो गुरुद्वारे विच ताश खेडदे ने। इत्थे सिर्फ गुरबाणी सुननी है, गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी जपनी है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कीर्तन जपना है, बस और कुछ नहीं। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखाणी। गुरमत नियम की पालना ना करदे होए इत्थे कोई सेवा करनी, इत्थे होर कोई काम करने ने, क्षमा करनी, बहुत बड़ा गुनाह और ऐसा पाप जो नाकाबले माफ। कितने बख्शाणगे? क्योंकि जिथे बख्शाणा है उत्थे ही अनर्थ करना है। कितने बख्शाणगे? किहड़ी थां ते बख्शाणगे? मनमई कोश नूं विचार चाहिए। जे चंगे विचार नहीं तो फिर माड़े। तो नावल है गए ने, मैगजीन है गए ने। मैगजीन गंदे पढ़न वाला, गंदे नावल पढ़न वाला, इतना तो सबूत दे रहा है मन बहुत गंदा है, बहुत गंदा भोजन छकता पे। पुरखा रोटी की बुरकी गंदी अंदर ना जावे, बदबूदार अंदर ना जावे। तू सोच लैना है गंदे विचार अंदर क्यों जान? तू क्यों नहीं सोचता? तू क्यों नहीं विचारता? इन्हें भी आहार बनना है। जिथे रोटी की बुरकी तेरी खून बनेगी, उथे विचार तेरे खून दे रमन गए। और कई विचार इतने गंदे, फिर इस तरह के मनुखां का खून भी गंदा ही होंदा, और कुछ नहीं होंदा। इकबाल कहिंदा है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। अगर खून है वाकई पवित्र साफ शफाफ, जेदे चंगे विचार दौरा कर रहे हैं, तो इकबाल कहिंदा ऐसी एक खून की बूंद भी बड़ी क्रांति ले आवेगी, बड़ी गल कर देवेगी। इस वास्ते किधरे किधरे महापुरुषों नूं खून डोलना पैंदा। महापुरुषों को कोई कर्मा की मार नहीं आती, अगर कोई तत्ती तवी ते बैठ गया है या चांदनी चौंक विच खून डोलता है, नहीं। कुछ काम ऐसे होंदे ने खून डोले बिना होंदे ही नहीं। 30 साल तो सिख जगत के प्रचारक बोल रहे सन भी चारों पासे सिख जगत नूं ढा लगी हुई है पखंडियां द्वारा। आप सुन के हैरान हो गए, हिंदुस्तान विच जितने साधु संत मंद गुरु ग्रंथ साहब ते गुरमत की लहर नूं दबाण की कोशिश करदे ने, होर किसे लहर नूं नहीं। हालांकि इस्लाम की लहर उत्थे चल रही है, ईसाइयत है, सनातन मत है, आर्य समाज है, पर जिन्नी मुखालफत सिख जगत की, होर कुछ नहीं, होर किसी की नहीं। मैं घूम फिर के ऐसा देखे, पता क्यों? डाकू कित्थे जांदे ने? जिस घर विच कुछ होवे उत्थे डाकू जांदे, जिथे कुछ है ही नहीं उत्थे की डाकुआ ने डाका डाल, जिथे है ही नहीं पिया ही कुछ नहीं, जिथे कुछ पिया होवे डाकुआ की निगाह उत्थे होंदी है। ते डाकू उत्थे डाका डालने दे सफल हो जाते हैं जिथे घर वाले सारे सुते पे हो। तो यह कौम बड़ी धनाढ़ कौम है, इहदे कोल ज्ञान ध्यान का खजाना है, इहदे कोल शहीदां का खून है, गुरु शहीद, साहबजादे शहीद, सिंह शहीद, ब्रह्म ज्ञानी शहीद। इस कौम दे कोल शहीदां का जितना वड्डा सरमाया है दुनिया की किसी कौम कोल नहीं है, और इस कौम कोल जितना ज्ञान है दुनिया को किधरे नहीं। तो डाकुआ की निगाह से पैनी। 30 साल तो प्रचारक तेरा गे
ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਧਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਟੇਰੇ ਪਕੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਬਟੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਲਤੂ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਤੂ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਤਿੱਤਰ ਪਕੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਲਤੂ ਤਿੱਤਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਕਿਧਰੇ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਹੂ ਬਹੁ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਸਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੁੱਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਫੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਫਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਬਹੁਤ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਏ, ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਨਿੰਦਰਾ ਚ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਦਸਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਰਗ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ। ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਵਣ, ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਕੇ ਕਤਰੇ ਮੇ ਵੋ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀ ਡੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਢਾਡੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਗੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬੂੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਇਹ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੌਂਦਾ। ਕੌਮ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੌ ਗਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਾਗੇ। ਤੋ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਕੇ ਕਤਰੇ ਮੇ ਵੋ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ। ਤੋ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, 1-2% ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੰਦ। ਤੋ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਹੋਸ਼। ਬੰਦੇ ਖਾ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ, ਬੋਲ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਸੁਣ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੂੰ ਸੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੋਵੇਂਗਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਜਾ ਲੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਜਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਲਸਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਝਰਨਾਟ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਧਾਈ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਾਈ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਨਾ। ਗੱਲ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਲੀ, ਬਚਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੀ ਛੋਇਆ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ, ਦਿਓ ਸਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਲ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਬਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਬਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਚਿੰਤਾ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ। ਜਦ ਅਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ, ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੋਸ਼ ਮਿਲੇ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੂਝ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਪ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੂਝ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਜਪਜੀ ਦੇ ਚੋਂ ਜਾਪ ਦੀ, ਜਾਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਹ 1100 ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, 1100 ਦਫ਼ਾ। ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਾਪ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 1100 ਦਫ਼ਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਜਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਦਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਂ, ਸਜਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਖੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲੇ ਸਾੜ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਾਪ ਖੋ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਖੋ ਨਾ ਲੈਣ, तो कुछ बैराग चाहिए तो सवैया विच बैराग है माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात ने वारे भारी बुझान के भूप बली बेदन्यावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो कहां भय भूपत अंत को नांगे पाए पधार अन्ने वड्डे वड्डे वे जगत तो नंगे ही गए कुछ नहीं ये मिथ्या गल सामने आवे ताकि जाप बने आ रहे नहीं तो संसार की ऐशो इशरत जाप खो लेंदी है ताप खो लेंदी है मनुख भुल जांदा है गुरुद्वारा ये सवैये जाप ते जपजी बनाई रखते हैं जपजी का रस जाप साहब का आनंद रस ते सवैये बनाई रखते हैं क्योंकि बैराग है अंदर बैराग पैदा हो गया बैराग प्रफुल्लित हो सके आनंद तक पहुंच सके ये जप ते जाप नू भाग लग सकन तो अरदास चाहिए जोदड़ी अरदास ऐ गुरु ये बैराग बने आ रहे ये जाप बने आ रहे ये सजदे बने रहन तो अरदास चाहिए तो चौपाई देच अरदास है अमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित की इच्छा तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्सभे तुम घाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ हुण इत्थे जो बेनती है जो जोदड़ी है ऐ परिपूर्ण परमात्मा तेरे चरणा दा ध्यान मेरे मन विच बणिया रहे पूरन होए चित की इच्छा की तो चरणन मन रहे हमारा तेरे चरणा च मेरा मन जुड़िया ही रहे हर वक्त जुड़िया ही रहे ये प्रार्थना है ये अरदास है चौपाई दे ते जद अरदास सुनी जाती है जन की अरदास बिरथी नहीं जाती कहती जेदे अंदर बैराग है जेदे अंदर जाप है जेदे अंदर जप है ओदी अरदास कदी व्यर्थ नहीं जाती ते जद अरदास सुनी गई चौपाई द्वारा अरदास हो गई तो फिर आनंद बन जाता है आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जाने आनंद भया मेरी माँ है सतगुरु मैं पाया सतगुरु का मिलन हो गया आनंद का प्रकाश पैदा हो गया आनंदमयी कोश ये पंजवां कोश है जिस दे उते बाकी दियां परतां ने और सिर्फ अन्नमयी कोश दे तल ते जी रहा और कुछ ही नहीं और दा कुछ पता ही नहीं ये ते पशुआं दी तरह जीना ये ते बनस्पति दरख्तां दी तरह जीना ये ते कीड़े मकोड़ियां दी तरह जीना कोई खास जिंदगी नहीं कह सकते हैं कि चलो कुछ मनुखां वाली जिंदगी जी रहा है प्राणमयी कोश की भी चिंता कर रहा है कुछ देवतियां वाली जिंदगी जी रहा है मनमयी कोश की चिंता कर रहा है चंगे विचार दे रहा है पर उत्थे भगत ते भगवान दे सिख ते गुरु दे कोई भेद नहीं रह जाता जो विज्ञानमयी कोश की चिंता करता है भी होश दे च मैं हर काम करना है इतना होश संभालना है कि सुतियां भी होश बनिया रहे कि जब एक परम होश मिलता है तो आनंद जो पंजवां कोश है वह प्रगट हो जाता है और वह सामने इंज प्रगट हो जाता है जिवें सवेरे सूरज उदय होता है प्रकाशमान होता है वह आनंदमयी कोश जीवन में इंज प्रगट हो जाता है तो मनुख की रचना तो निकलता है अज आनंद मिले है उसे ही आनंद का जिक्र गुरु अमरदास जी महाराज करते पे ने इस वास्ते उसने पंजवीं थां ते रखे पंज कोश ने साडे पंज शरीर पंज बाणियां मेरे पातशाह ने सानू दित्तियां पंज रायतां दित्तियां ने पंज ककार दित्ते ने दरअसल एक एक दी तह विच जाओगे ते कुछ अगमे रमजां सामने आउंदियां ने पंज कोशां दी समय दी बंदिश नूं मुख रख के थोड़ी जिहा विचार रखी है क्योंकि बोलदा गया तो मैं बहुत समा होर थोड़ा लै जाणा है इस वास्ते होर अगां ना वधां इन्हां कोशां दी फिक्र जरूर करने किहड़े कोश ते जी रहे हां किहड़े तल ते जी रहे और किहड़े-किहड़े कोश साडे साफ सुथरे हो गए बिल्कुल ठीक हो गए अन्नमयी कोश जिहदा खाणा पीणा ठीक है उहदा अन्नमयी कोश ठीक रहेगा जिहदे वास्ते थोड़ी बहुत ताज़ी हवा लैण दा भी माहौल उसने बनाया होया प्राणमयी कोश ठीक रहेगा नहीं तो अनेकां वायु रोग पैदा हो जांदे और जिहनूं चंगे विचार मिल रहे ने उहदा मनमयी कोश बड़ा सुंदर हो गया ते जेड़ा होश दे सब कुछ कर रहा है भाई बेहोशी कुछ भी नहीं करना रोज होश की साधना करनी है तो साधव्या साधव्या जिस दिन बंदा परम होश दे पहुंच जाता है उस दिन आनंदमयी कोश प्रगट हो जाता है कितनी विचार इस वक्त प्रगट करनिया जिवें सतगुरु ने तुच्छ बुद्धि दिती है उस बुद्धि अनुसार इन्हां पंज कोशां की कुछ विचार थोड़े सामने रखीए शरीर सरोवर भीतरे आछे कमल अनूप परम जोत पुरखोक तुम्हें जां के रेख न रूप। वो जिहड़ा पंजवां कोश है वह एक कमल है, सुगंधित है, आनंद स्वरूप है, खेड़ा है, मस्ती है। सतगुर सारिआं नूं उस पंजवें कोश तक पहुँचाए ते उसदे ही दर्शन कराए। बाकी दे विचारां कल थोड़े सामने भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।